हरे कृष्ण अथ
विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।
अध्याय 11 विराट स्वरूप। इस अध्याय में टोटल 55 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता के, जो बहुत बड़े अध्याय हैं। जैसे 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं, तो वो सबसे बड़ा अध्याय है। और दूसरे नंबर पर दूसरा अध्याय जिसमें 72 श्लोकास हैं, और ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, उसमें 55 श्लोक्स हैं। और ये थर्ड लॉन्गेस्ट यानी तीसरे नंबर पर बड़े से बड़ा अध्याय है। और इस अध्याय की मुख्य बात क्या है कि इस अध्याय में भगवान अपना एक स्वरूप दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें केवल थ्योरी है, वार्तालाप है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, कृष्ण उत्तर दे रहा है, तो वार्तालाप है। परंतु सिर्फ ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें ड्रामेटिक वे से कुछ दिखाया जा रहा है, और जो दिखाया जा रहा है वो भी इतना आश्चर्यमय है कि उसको देखने के लिए भी भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ती है अर्जुन को। तो ये अध्याय जो है वो एक अलग तरीके का, मतलब भगवद गीता का एक अलग टर्न है कि इसमें भगवान अर्जुन को अपनी वास्तविकता को दिखाते हैं कि मैं क्या हूं और मैं किस तरह से, क्योंकि इतना बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्वामी हूँ, हर एक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, आज भी कोई गुरु आके या कोई बोल दे आके मैं भगवान का अवतार हूँ या मैं भगवान हूँ, तो वो तब तक साबित नहीं होता जब तक कि दिखाया ना जाए। पर अर्जुन को भगवान साबित करके दिखा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम मेरे अंदर इस संसार के त्रिलोकी के हर एक वस्तु को देख सकते हो। इस सारे संसार में जो कुछ दिख रहा है, भगवान ने कह दिया यद्यद् विभूति वत्सत्वम् श्रीमदुर्जितम् एवं तत् तदेवावगच्छतम् मम तेजो अंश संभव, वो मेरे अंश से ही जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ऐश्वर्यमान है, जो कुछ तेजस्वी है, वो मेरे अंश से ही निकला है। इतना बोल तो दिया, परंतु अब वो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को संशय है भगवान की इस बात पर, इसलिए अर्जुन को के संशय को मिटाने के लिए दे, नहीं, अर्जुन ने तो भगवान की सत्ता को श्लोक नंबर 10.12 में ही स्वीकार कर दिया था। बोला, नहीं प्रभु, मैं मान चुका हूँ कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम नाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि दैवम अजम विभु, मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया कृष्ण, परंतु कल दूसरे लोग आएंगे तो वो अगर प्रमाण मांगेंगे तो ऐसा कोई आपका जलवा दिखना चाहिए, आपका कुछ ऐसा स्वरूप दिखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उसको स्वीकार करने पर विवश हो जाए कि आप ही परम सत्य हो। तो इस अध्याय में भगवान अपने उस विराट स्वरूप को दिखाएंगे। इस अध्याय में श्लोक नंबर 1 और 2 में अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से कृतार्थ होने का बखान करते हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। यत् देहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यः, भगवान ने कहा 10.1 में, तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ उसके दो कारण हैं। यत् देहं प्रीयमाणाय, तुमसे प्रेम करता हूँ, और दूसरा वक्ष्यामि हितकाम्यया, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, तुम्हारा हित करना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो अर्जुन श्लोक नंबर 1 और 2 में भगवान के इस अनुग्रह से कृतार्थ होने का बखान करते हैं, और श्लोक नंबर 2 से लेकर 4 तक अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि यदि आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं तो आप मुझे उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराइए। और श्लोक नंबर 5 से लेकर 7 तक कृष्ण बोलते हैं, पश्य, देखो अर्जुन, जो तुम देखना चाहते हो देखो। और क्योंकि कृष्ण जो दिखाने वाले हैं वो दृश्य इतना अद्भुत है कि वो देखने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए पहले कृष्ण श्लोक नंबर 5 से 7 तक बता देते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई देगा इसमें। और श्लोक नंबर 8 में भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि क्योंकि तुम अपनी इन साधारण नेत्रों से मेरे उस स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और उसके बाद श्लोक नंबर 9 से लेकर 14 तक संजय वाच, संजय बताएंगे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय में संजय के वाच्य होते हैं। संजय बोलता है कि क्या क्या दिखाया जा रहा है युद्ध भूमि में, और उसके बाद 18वें अध्याय में संजय के वो शब्द होते हैं। 20 के अध्याय में संजय के श्लोक नहीं है, दूसरे अध्याय में है एक बार, परंतु बाकी 20 के अध्याय में संजय ने कोई वार्तालाप नहीं किया, बस जो कृष्ण और अर्जुन के विषय में बीच में जो वार्तालाप हो रहा है बस उन्हीं के शब्दों में उनका बखान किया गया। ये जो 11वां अध्याय है इसमें संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, क्या बताते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। अर्जुन जो देख रहे हैं वो एज इट इज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है। और फिर अर्जुन की क्या स्थिति हो रही है, अर्जुन किस प्रकार से भयभीत हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, ये सब संजय बताते हैं 9 से लेकर 14 तक। और उसके उपरांत श्लोक नंबर 15 से लेकर 31 तक अर्जुन सबसे पहले तो भगवान के उस स्वरूप का गुणगान करते हैं, और उसके बाद आश्चर्य प्रकट करते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ आपका स्वरूप नहीं है, अनेकों हाथ है, अनेकों पेट है, अनेकों नेत्र है, अनेकों जंघाएं हैं, अनेक आपका स्वरूप कितना अद्भुत है। और उसके बाद अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि संपूर्ण सेना आपके मुखों में चूर्ण बंदी हुई जा रही है, आपके मुख से तो अग्नि निकल रही है, मुझे बहुत भय हो रहा है कृष्ण आपको देखकर। और उसके बाद भगवान से जिज्ञासा करते हैं, अर्जुन कहते हैं, भगवान उग्र रूप, आप मुझे ये बताओ कि इस उग्र रूप में आप हो कौन। और उसके बाद श्लोक नंबर 32 से लेकर 34 तक 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृतम, ये जो मैं वास्तव में काल हूँ और संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है उसका क्षय करने के लिए आया हूँ। और उस समय क्योंकि भगवान काल स्वरूप में थे तो अर्जुन बहुत भयभीत होते हैं। और श्लोक नंबर 35 से लेकर 46 तक अर्जुन विश्व रूप को देखकर भयभीत होते हैं और उसका वर्णन है, और अर्जुन विश्व रूप का गुणगान करते हैं, उसके विषय में बताया जाता है। और उसके बाद 47 से लेकर 49 तक भगवान अर्जुन को पुनः दिलासा देते हैं और कहते हैं, अच्छा अर्जुन, तुम यदि डर गए हो तो चिंता मत करो, शांत भाव से मेरे इस स्वरूप को देखो तो तुम्हें वही सौम्य स्वरूप जो तुम देखना चाहते हो वो तुम शांत भाव से देख सकते हो। श्लोक नंबर 50 में संजय बताते हैं कि उसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपना चतुर्भुजी स्वरूप दिखाया और उसके उपरांत दो भुजाओं वाला अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गत दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं। ये जो मनुष्य जैसा स्वरूप है ना कृष्ण, इसको जब मैंने देखा तब सौम्य जनार्दन, ये जनार्दन आपका ये जो मनुष्य जैसा स्वरूप है वो बहुत सौम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, और इसको देखने के उपरांत आपके इस अतीव सुंदर मानवीय स्वरूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और मैंने अपनी सचेतः प्रकृतिम गता, अपनी जो वास्तविक प्रकृति है, अपना स्वभाव है, उस अपने वास्तविक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लिया है। उसके उपरांत श्लोक नंबर 52 एंड 53 में भगवान ये बताते हैं कि ये जो मेरा स्वरूप तुम देख रहे हो उससे देखना कोई इतना आसान नहीं है, ना हम वेदय न तपसा ना दाने न चेचया। मेरा स्वरूप को देखना चाहे वेद पढ़ने से या फिर तपस्या करने से सुलभ नहीं है, और अगर इसको प्राप्त करना है, इसको देखना है, मेरी प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 54 एंड 55 में। भगवान कहते हैं भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहमेव विदो जना, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन, मुझे देखा, मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है तत्व से, और प्रवेशतुम च परंतप, और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है, और केवल इसी द्वारा। मत कर्म कर्ण मत परमो मत भक्त संगवर्षित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सामेम सामेति पांडव। मत कर्म कृण, मेरा कर्म करने में रत, मेरे लिए कार्य करना। मत परमा, मुझको परम मानना। मत भक्त, मेरी भक्ति में रहना। और संगवर्षिता, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के समस्त संगों से मुक्त होकर निर्वैरा, किसी से भी शत्रुता नहीं करना। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों से प्रेम करना। यह स, जो ऐसा व्यक्ति होता है, माम एति, मुझको प्राप्त करता है, पांडव हे अर्जुन। तो भगवान इस अध्याय में अपने वास्तविक स्वरूप, अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं, जो कि भगवान का एक भौतिक स्वरूप है। इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु किस तरह से भगवान के अंदर है वो दिखाते हैं, और अंत में अपना वास्तविक स्वरूप दो भुजा वाला दिखा के कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति इस कलयुग में कैसे की जाती है, भगवान के पवित्र नाम का जप करके और भगवान की कथाओं को श्रवण करके। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिसनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्ण पादां सकल ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद गीता मात्र की जय हो। अध्याय 11 श्लोक नंबर 1 ये इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। शब्दात् अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहाय, मद यानी मुझ पर, अनुग्रह यानी कृपा करने के लिए, परमम परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम, गुह्यम यानी गौपनीय सीक्रेट आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, संगीतम यानी नाम से जाने वाला जाना जाने वाला विषय, जो आध्यात्मिक सीक्रेट्स हैं वो सारे पूर्ण रूप से सारे के सारे यत त्वया, यत माना जो, त्वया मतलब आपके द्वारा उक्तम कहे गए, आपने अब तक जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही सीक्रेट है, आपने स्वयं कहा कि ये परम गुह्य है, परम गुह्य ज्ञान है, और वो आपने मुझे जो बताया है आपके द्वारा, जो आपने मुझे बताया और आपने कहा कि क्योंकि इसी से मेरा कल्याण होगा, तो इन वचनों को सुनकर वचस्तेन उन वचनों से मोहोयम विगतो मम, मेरा मोहोयम मेरा मोह विगतो चला गया है, मम मेरा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति विधान स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत ही गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। हम सब ध्यान से श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविश्वों के भी कारण स्वरूप हैं जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव हुआ है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपने मित्र स्वरूप में सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है। उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के कल्याण के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने विराट स्वरूप को दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कुछ कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर भाव है यहाँ पर। अर्जुन भगवान को बता रहे हैं मद अनुग्रहाय। अर्जुन कहते हैं आपके ऊपर मेरी असीम कृपा है। वास्तव में भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उनको श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये सबसे बड़ी कृपा है। अब यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं यत्व योक्तम वचस्तेन, आपने जो मुझे शब्द बताए हैं, जो शब्द अर्जुन ने सुने हैं अब तक दसवें अध्याय तक, वो सब हमने भी सुने हैं। तो हमें भगवान से सदैव ये बताना चाहिए कि आपकी मेरे ऊपर असीम कृपा है कृष्ण, आपकी परम करुणा से ही ये संभव हुआ है। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है, ये तो कृष्ण की कृपा है कि हमें भगवद गीता के स्वरूप में अपने इस दिव्य वचनों को श्रवण करने का अवसर दे रहे हैं। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं मद अनुग्रहाय, आपकी कृपा है मुझ पर। और भगवान ने कहा है, पहले भगवान ने कहा 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति। जो सदैव मेरा स्मरण करते रहेंगे, सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं, प्रेम से करेंगे, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा जिससे वो मुझे प्राप्त करेंगे। और उसके बाद 11 नंबर में कहा, 10.11 में भगवान कहते हैं तेषामिवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः, तेषामिवानुकम्पा, उनके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, अनुकंपा करता हूँ। और यही अनुकंपा यहाँ अर्जुन कह रहे हैं मुझ पर की है आपने, आप खाली कहते नहीं हो, आप करते हो। तेषामिवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः, अज्ञान के कारण जो अंधकार जमा हो गया है, नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रकाशवान दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित करता हूँ और अज्ञानता के अंधकार को, मोह को नष्ट कर देता हूँ। और अर्जुन कह रहे हैं आपने ऐसा ही किया है जैसा कि आप कहते हो, क्योंकि आपकी असीम अनुकंपा हुई है मुझ पर, मद अनुग्रहाय परमम, परम अनुकंपा हुई है। और क्या अनुकंपा हुई है, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने बहुत बहुत गुह्य आध्यात्मिक संगीतम, आध्यात्मिक जितना भी पूर्ण ज्ञान है वो सब मुझे बताया है, ये सबसे बड़ी अनुकंपा है मुझ पर। और यत्व योक्तम वचस्तेन, आपके जो शब्द मैंने सुने हैं, जो आपके मुख से निकले वो मैंने सुने हैं, उसकी कारण क्या हुआ? मोहोयम विकतो ममा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। वास्तव में भक्तों, सबसे बड़ी कृपा कृष्ण की यही है कि हमारे हृदय में जो मोह है ना, जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो नष्ट हो जाए। अर्जुन की प्रॉब्लम भी यही थी। अर्जुन ने कहा था भगवान को कि मैं मोहित हो गया हूँ, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छयामि त्वाम धर्म सम्मोड चेता, मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मैं अपना सारा धैर्य खो गया हूँ, इसलिए पृच्छयामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं रोहितं, में जो मेरे लिए श्रेयकर है वो मुझे बताइए, और अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, क्योंकि नहीं प्रपश्यामि मम आपनो ध्यान यच्छो कमुच्छो शर्म इंद्रियाण, मुझे तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अवाप्य भूमावस पत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, इस भौतिक जगत के राज्य का तो छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं है, यदि स्वर्ग के देवताओं जैसा आधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ये मोह था अर्जुन का, और भगवान ने जब उसे बताया कि तुम्हें कार्य करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है और फल के विषय में नहीं सोचना है, पर भगवान को समर्पित करना है, यही भक्ति है, और तब वो कार्य तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि वही कार्य तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। बुद्धि योगम त्रिमांशो, और इसके द्वारा भगवान ने बताया कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास से, जब तुम बुद्धि योग में रहकर कार्य करोगे तो कर्म के बंधन से छूट जाओगे। और ये बुद्धि योग कैसे प्राप्त होगा वो भगवान ने बताया अर्जुन को, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वक, बस तुम्हें सदैव मेरा स्मरण करना है और यही सोच के कार्य करना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य के अच्छे और बुरे फल भुगतने नहीं पड़ेंगे। तो भगवान को अर्जुन कह रहे, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है, मेरा मोह समाप्त हो गया है कि आप कोई साधारण नहीं हो और आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, मेरा कार्य यही है कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूं, फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की मुझे कोई इच्छा नहीं करनी है, वो तो आपकी कृपा से जो भी प्राप्त होगा उसी से मेरा कल्याण होगा। इसे कहते हैं अर्जुन के मोहयम विगतो मया, वास्तव में यही बात अर्जुन से भगवान दोबारा पूछेंगे श्लोक नंबर 18.72 में। भगवान अर्जुन से कहते हैं फिर से, कच्चिदेतम श्रुतम पार्थ त्वयै काग्रेन चेतसा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट अस्ति धनंजय, क्या तुमको मैंने अब तक जो कुछ बताया है वो तुमने ध्यान से सुना है और एकाग्र चित्त होकर तुमने उसको श्रवण करके अपने अंदर उसको धारण किया है, और क्या तुम्हारा मोह और अज्ञानता नष्ट हो गई है? कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट अस्ते धनंजय, क्या अब तुम्हारा मोह समाप्त हो गया? और यही बात जो आज अर्जुन कह रहे हैं, मोहयम विगतो मम, उसी को 18.73 में कहेंगे, नष्टो मोह सिमृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, स्थितो अस्मि गत संदेह। और अभी क्या कह रहे हैं, मोहोयम विगतो मम, यही बात बता रहे हैं कि अच्युत अभी मेरा मोह दूर हो गया है आपके अनुग्रह से, त्वत् प्रसादान मयाच्युत, और यहाँ पर भी ये कह रहे हैं मद अनुग्रह कि आपका मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है, तो उससे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय तथा
संशय रहित हूं तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कार्य करने के लिए उद्यत हूं। तो श्री प्रभुपाल जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि अर्जुन का तो मोह समाप्त हो ही गया है और अर्जुन पूरी तरह से जान गया है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और कृष्ण की शरण में है अर्जुन। परंतु वो ये आगे के अध्याय यानी कि अर्जुन ने तो 10.12 में भगवान को परम ब्रह्म घोषित कर दिया था और अब आगे अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भले ही वो कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। इसलिए इस अध्याय में वो दूसरे लोगों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट स्वरूप दिखाएं। अब अर्जुन ने बता दिया कि आपके मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम यचस्तेन मोहोयम विगतो। मेरा मोह तो समाप्त हो गया लेकिन दूसरों का मोह केवल थ्योरी से समाप्त नहीं होगा, उनको प्रैक्टिकल कुछ दिखाना पड़ेगा। और जब देखेंगे, जब इस बात को समझेंगे कि भगवान किस प्रकार से अपने विश्व स्वरूप को दिखा सकते हैं तो वो इस बात को मान जाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण कोई जीव नहीं है, कृष्ण साक्षात परम पुरुष भगवान है, ईश्वर परमः कृष्ण। तो आपकी भगवत्ता को स्थापित करने के लिए अर्जुन ये चाहते हैं कृष्ण कि कृष्ण को सब कोई भगवान स्वीकार करें। इसे अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से निवेदन करेंगे कि मुझे आपका स्वरूप दिखाइए, वो विराट स्वरूप, वो विश्व स्वरूप जिसमें हर एक चीज है। लेकिन ये जो विश्व रूप है उस वो भक्तों के लिए आकर्षित नहीं होता है। अर्जुन इसी अध्याय में बताएंगे कि ये वाले रूप को देख कर मैं तो विचलित हो गया हूँ, कृष्ण मुझे डर लग रहा है आपसे। भक्त भगवान से प्रेम करता है और विश्वरूप ऐसा होता नहीं है कि उससे प्रेम किया जा सके, वो तो केवल भय दिलाने वाला होता है। इसे भक्त सदैव भगवान को दो हाथों वाले स्वरूप में जिसमें बांसुरी पकड़ी हुई हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, गोपियों के साथ रास खेल रहे हो, तो कभी मैया यशोदा की रस्सी से बांधे जा रहे हो या फिर अपने ग्वालों के साथ गवा चराने के लिए जाते हैं और वहां पर बैठकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो भक्तों को वही कृष्ण का सौम्य स्वरूप ही आकर्षित करता है। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि अंत में अपने उस सौम्य, इस सुंदर, अत्यंत ही मधुर स्वरूप को दिखाते हैं। तो अब हम इस अध्याय में भगवान के विश्व रूप का दर्शन करेंगे। आप सब कृपया साथ रहिएगा और मेरे निवेदन को याद रखिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और आप सबकी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।